एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में गहरे उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही सत्ता, रणनीति और कभी कभी थोड़ी कह सकते हैं संदिग्ध राजनीति की छवियां मन में आती हैं। निकोलो मैकियावेली।
जी हाँ, निकोलो दी बर्नार्डो दी मैकियावेली। 1469 से 1527, देखिए 500 साल से ज्यादा हो गए, पर आज भी उनके विचार और खासकर उनकी वो किताब द प्रिंस, वो मतलब बहस का बड़ा मुद्दा है।
हाँ, और उन्हें आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है।
बिल्कुल कहा जाता है, हालांकि ये तमगा भी थोड़ा विवादित तो है ही।
सही कहा। तो ऐसा क्या खास था उनके विचारों में, मतलब क्यों आज भी पॉलिटिशियंस, स्ट्रेटजिस्ट, यहाँ तक कि बिजनेस लीडर्स भी उन्हें पढ़ते हैं? और ये भी कि उनका नाम मैकियावेलियन क्यों बन गया, मतलब एक तरह से चालाकी और जोड़ तोड़ का प्रतीक। चलिए आज इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल।
तो शुरुआत करते हैं उस समय से, उस माहौल से जिसमें मैकियावेली थे। कैसा था वो 15वीं-16वीं सदी का इटली?
देखिए, वो इतालवी पुनर्जागरण का शिखर था। मतलब एक तरफ तो आप सोचिए, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो जैसे महान कलाकार थे, अद्भुत काम हो रहा था।
हाँ, कला और संस्कृति का स्वर्ण युग।
जी, पर दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर इटली पूरी तरह बिखरा हुआ था, कोई एक देश नहीं था।
अच्छा।
हाँ, फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान, ये सब ताकतवर शहर राज्य थे। फिर पोप का अपना शासन था और फ्रांस, स्पेन जैसी बाहरी ताकतें भी थी। ये सब आपस में सत्ता के लिए लगातार लड़ते रहते थे।
मतलब धोखा, हिंसा, गठबंधन का बनना बिगड़ना।
हाँ हाँ, ये सब तो बिल्कुल आम बात थी। एक बहुत ही अस्थिर, कह सकते हैं हाई स्टेक माहौल था।
वाह, यानी एक तरफ कला का शिखर, दूसरी तरफ राजनीतिक अराजकता। और मैकियावेली का शहर फ्लोरेंस, वो भी इसी कश्मकश में था।
फ्लोरेंस तो समझिए इसका केंद्र था, व्यापार और संस्कृति का तो गढ़ था ही, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा अस्थिर। कभी वहां गणराज्य होता तो कभी मेडिसी जैसा कोई शक्तिशाली परिवार आ जाता और तामाशाही हुकूमत चलती। मैकियावेली ने इसी माहौल में अपनी आंखों के सामने सत्ता के इस खेल को देखा, और यही जो अराजकता थी, इसी ने उनके विचारों के लिए, कह सकते हैं, कच्ची जमीन तैयार की।
तो उनके अपने जीवन पर इस माहौल का क्या असर हुआ? क्या उनके अनुभव उनके लेखन में साफ छलकते हैं?
बिल्कुल सीधा असर पड़ा। देखिए, मैकियावेली का अपना जीवन भी किसी नाटक से कम नहीं था।
अच्छा।
हाँ, 1498 में जब मेडिसी परिवार को फ्लोरेंस से निकाल दिया गया, तब मैकियावेली करीब 29 साल के थे। उन्हें नए गणराज्य में एक बहुत महत्वपूर्ण पद मिला। वो दूसरे चांसलर बने और राजनयिक भी।
यानी करियर की अच्छी शुरुआत हुई।
बहुत अच्छी। उन्होंने 14 साल तक पूरी लगन से काम किया, एक समर्पित लोक सेवक की तरह। यूरोप के बड़े बड़े दरबारों में गए, राजाओं, शासकों से मिले। सत्ता की जो अंदरूनी राजनीति होती है ना, उसको बहुत करीब से समझा। ये उनके जीवन का, कह सकते हैं, शिखर काल था।
और फिर पतन, जैसे अक्सर नाटकों में होता है।
बिल्कुल। 1512 में स्पेन की मदद से मेडिसी परिवार वापस सत्ता में आ गया।
ओह।
गणराज्य खत्म हो गया और मैकियावेली, उनकी नौकरी चली गई। इतना ही नहीं, उन पर साजिश में शामिल होने का शक किया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया।
जेल में भी?
हाँ, और यहां तक कि उन्हें यातनाएं भी दी गईं, टॉर्चर किया गया। ये उनके लिए एक बहुत बहुत जबरदस्त झटका था।
ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ। तो मतलब उनका जो पब्लिक करियर था वो तो खत्म ही हो गया।
हाँ, सार्वजनिक जीवन तो खत्म हो गया, लेकिन शायद इसी त्रासदी ने, इसी निर्वासन ने उनके अंदर के विचारक को जगाया। उन्हें फ्लोरेंस के बाहर अपने छोटे से खेत पर भेज दिया गया,
निर्वासित कर दिया गया।
जी, और वहीं उसी एकांत में अपनी हताशा, अपने अनुभवों को समेटकर उन्होंने वो किताबें लिखीं जिन्होंने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया, खासकर द प्रिंस और डिस्कोर्सेज ऑन लिवी।
ये बात तो बड़ी दिलचस्प है कि ऐसी उथल पुथल और निजी दुख से इतने प्रभावशाली और कह सकते कालजयी विचार पैदा हुए। मैंने सुना है उनके निर्वासन के दिनों की कोई खास दिनचर्या थी, कुछ अलग सा करते थे वो।
हाँ हाँ, उन्होंने खुद एक दोस्त को लिखे खत में इसका जिक्र किया है, बड़ा दिलचस्प है। वो लिखते हैं कि दिन के समय तो वो अपने खेत का काम देखते थे, गांव वालों से मिलते थे, बहस करते थे, शायद सराय में ताश भी खेलते थे,
बिल्कुल आम लोगों की तरह।
हाँ, लेकिन शाम होते ही वो अपने स्टडी रूम में जाते थे, अपने पुराने औपचारिक दरबारी कपड़े पहनते थे।
दरबारी कपड़े फार्म पर?
हाँ, और फिर वो कहते थे कि वो प्राचीन पुरुषों के प्राचीन दरबारों में प्रवेश करते हैं, मतलब वो इतिहास के महान विचारकों, रोमन और ग्रीक लेखकों की किताबें पढ़ते थे, मानो वो उनसे सीधी बातचीत कर रहे हों। ये एक तरह का अनुष्ठान था उनके लिए।
कमाल है, ये तो अद्भुत है, अपनी मुश्किल हकीकत से निकलकर विचारों की दुनिया में चले जाना।
बिल्कुल, और इसी बौद्धिक दुनिया में उन्हें वो गहरी समझ मिली जो उनके लेखन में हमें दिखती है।
तो चलिए अब आते हैं उनकी सबसे प्रसिद्ध या शायद सबसे बदनाम रचना पर, द प्रिंस। ऐसा क्या है इस छोटी सी किताब में जो इसे इतना विवादास्पद बनाता है?
द प्रिंस इल प्रिंसिपे, जो उन्होंने करीब 1513 में लिखी, असल में ये नए शासकों के लिए एक तरह की हैंडबुक है, गाइडबुक।
अच्छा, क्या सिखाती है ये?
ये सिखाती है कि सत्ता कैसे हासिल की जाए और उससे भी जरूरी, उसे बनाए कैसे रखा जाए। और इसकी सबसे क्रांतिकारी और लोगों को चौंकाने वाली बात यह है कि यह साफ तौर पर कहती है कि शासक को राज्य को सुरक्षित रखने के लिए अगर जरूरत पड़े तो पारंपरिक नैतिकता को ताक पर रख देना चाहिए।
मतलब सही गलत की परवाह नहीं करनी चाहिए।
हाँ, उनका तर्क था कि जरूरत पड़ने पर क्रूरता, धोखा, बल, इन सब का इस्तेमाल करना भी जायज है अगर उससे राज्य बचता है या मजबूत होता है।
तो क्या यही है जिसे उनका राजनीतिक यथार्थवाद या पॉलिटिकल रियलिज्म कहा जाता है, कि राजनीति के अपने नियम होते हैं जो शायद आम जीवन की नैतिकता से अलग है?
बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही उनका सबसे बड़ा और शायद सबसे स्थायी योगदान है, राजनीति को नैतिकता और धर्मशास्त्र से अलग करके देखना। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें दुनिया को वैसे देखना चाहिए जैसी वो असल में है, न कि जैसी उसे आदर्श रूप में होना चाहिए।
अच्छा,
सत्ता असल में कैसे काम करती है, लोग असल में कैसे होते हैं? उनके हिसाब से लोग स्वाभाविक रूप से स्वार्थी, अविश्वसनीय होते हैं। तो इसी वास्तविक सच्चाई पर, जिसे वो इफेक्चुअल ट्रूथ कहते थे, उसी पर ध्यान देना चाहिए।
लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं निकलता कि शासक फिर कुछ भी कर सकता है सत्ता बचाने के नाम पर? ये तो थोड़ा खतरनाक विचार नहीं लगता?
हाँ, और यहीं से सारी बहस शुरू होती है। उनके आलोचक हमेशा से यही कहते आए हैं कि मैकियावेली ने तो अत्याचार और अनैतिकता का एक तरह से नुस्खा लिख दिया। पर मैकियावेली के नजरिए से देखें तो शायद वो ये कह रहे थे कि राजनीति की दुनिया में सिर्फ आदर्शों पर चलना खतरनाक हो सकता है। उनका एक बहुत मशहूर कथन है जो इसी बात को दिखाता है।
कौन सा?
वो कहते हैं, एक व्यक्ति जो हर तरह से सिर्फ अच्छाई का ही पालन करना चाहता है, वो इतने सारे बुरे लोगों के बीच रहकर जरूर बर्बाद हो जाएगा। तो शायद वो चेतावनी दे रहे थे कि एक निर्मम दुनिया में अगर कोई शासक सिर्फ किताबी नैतिकता पर चलेगा तो वो टिक नहीं पाएगा, उसका राज्य नष्ट हो जाएगा।
हाँ, ये सोचने वाली बात है। उन्होंने दो और बड़े दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किए हैं, वर्च्यू और फॉर्चुना। इनका क्या मतलब है उनके दर्शन में?
हाँ, ये उनके विचारों के केंद्र में है। देखिए, फॉर्चुना का मतलब है भाग्य, किस्मत, संयोग, वो अप्रत्याशित ताकतें जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा ही होता है अचानक।
हाँ, किस्मत का खेल।
बिल्कुल, लेकिन विर्तु ये वो गुण नहीं है जिसे हम आम तौर पर सद्गुण या नैतिकता समझते हैं, जैसे ईसाई धर्म में। मैकियावेली के लिए विर्तु है शासक का कौशल, उसकी क्षमता, उसका पराक्रम, महत्वाकांक्षा, चालाकी, दूरदर्शिता और जरूरत पड़ने पर कठोर फैसले लेने की हिम्मत।
अच्छा, तो ये एक तरह की राजनीतिक क्षमता हुई।
हाँ, मैकियावेली मानते थे कि भाग्य यानी फॉर्चुना बहुत शक्तिशाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक वेतु वाला शासक जिसमें ये गुण हैं, वो भाग्य द्वारा फेंकी गई चुनौतियों का सामना कर सकता है। वो शायद सब कुछ नियंत्रित न कर सके, पर लगभग आधी परिस्थितियों का अंदाजा लगाकर उन पर काबू पा सकता है।
तो वीरतु एक तरह की राजनीतिक महारत है जिसमें नैतिकता की जगह नतीजों पर, परिणामों पर ज्यादा जोर है।
हाँ, आप कह सकती हैं, और यहीं से वो विचार जुड़ता है जिसे अक्सर मैकियावेली से जोड़ा जाता है, साध्य साधनों को उचित ठहराता है।
हाँ, ये तो बहुत सुना है।
हालांकि उन्होंने ये वाक्य हूबहू कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनके लेखन का भाव यही निकलता है कि शासक के कामों का मूल्यांकन उनके नतीजों से होना चाहिए, कि क्या उन्होंने राज्य को सुरक्षित रखा, उसे स्थिर बनाया, उसकी महिमा बढ़ाई, ना कि इस आधार पर कि वो काम पारंपरिक नैतिक पैमानों पर खरे उतरते हैं या नहीं।
लेकिन फिर उनकी एक और बड़ी किताब है डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, और मैंने सुना है कि ये द प्रिंस से काफी अलग है, उसमें वो कुछ और ही बात करते हैं।
हाँ, और ये वाकई एक बड़ी पहेली है। डिस्कोर्सेज, जो उन्होंने रोमन इतिहासकार लिवी की रचनाओं पर लिखी है, उसमें मैकियावेली एकदम अलग नजर आते हैं।
कैसे?
उसमें वो गणराज्य यानी रिपब्लिक की शासन प्रणाली की तारीफ करते हैं, उसकी श्रेष्ठता का तर्क देते हैं, वो नागरिक गुणों की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, कानूनों के शासन की जरूरत पर बल देते हैं।
ये तो द प्रिंस की तानाशाही सलाह से बिल्कुल उलट लगता है।
एकदम उलट। द प्रिंस में वो एक निरंकुश शासक को सलाह दे रहे हैं और डिस्कोर्सेस में वो एक गणराज्य के गुणों का बखान कर रहे हैं।
तो फिर असली मैकियावेली कौन है, तानाशाहों के गुरु या गणराज्य के समर्थक? ये विरोधाभास क्यों है उनके लेखन में?
देखिए, ये सवाल सदियों से विद्वानों को उलझाता रहा है। इसके कई जवाब देने की कोशिश की गई है।
जैसे कि
कुछ लोग मानते हैं कि द प्रिंस उन्होंने शायद मजबूरी में लिखी थी। मेडिसी शासक वापस आ गए थे, वो बेरोजगार थे, तो शायद उन्हें खुश करने के लिए, अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए नौकरी पाने की उम्मीद में लिखी, जबकि डिस्कोर्सेस उनके असली दिल के विचारों को दर्शाती हैं।
अच्छा, ये एक संभावना है।
दूसरी व्याख्या ये है कि वो अलग अलग परिस्थितियों के लिए अलग अलग सलाह दे रहे थे, कि अगर कोई नया राज्य बना है, अस्थिर है, तो उसे बचाने के लिए प्रिंस वाली कठोरता जरूरी है, लेकिन अगर राज्य स्थापित हो चुका है, स्थिर है, तो फिर डिस्कोर्सेस वाला गणतांत्रिक मॉडल बेहतर है। और एक तीसरा नजरिया ये भी है कि शायद द प्रिंस एक तरह का व्यंग्य था, सटायर।
व्यंग्य
मतलब
शायद वो जानबूझकर शासकों के क्रूर तरीकों को इतना खुलकर लिख रहे थे ताकि आम जनता उन्हें पढ़कर सावधान हो जाए, उन्हें पता चल जाए कि शासक असल में कैसे होते हैं।
वाह, ये तो बहुत ही अलग नजरिया है।
हाँ, तो ये जो अस्पष्टता है, ये जो विरोधाभास है, यही उनके काम को आज भी इतना दिलचस्प और बहस के लायक बनाए रखता है।
वाकई ये तो काफी जटिल है। अच्छा, क्या उन्होंने सिर्फ राजनीति और शासन कला पर ही लिखा?
नहीं नहीं, उन्होंने सैन्य रणनीति पर भी एक महत्वपूर्ण किताब लिखी, द आर्ट ऑफ वॉर, द लड़ते दिला गिर्रा। इसमें वो उस समय बहुत प्रचलित भाड़े के सैनिकों, मर्सनरीज के इस्तेमाल की कड़ी आलोचना करते हैं।
क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि भाड़े के सैनिक भरोसे लायक नहीं होते, वो पैसे के लिए लड़ते हैं, राज्य के प्रति वफादार नहीं होते, इसलिए वो एक नागरिक सेना, सिटीजन आर्मी बनाने की वकालत करते थे। उनका मानना था कि राज्य की सैन्य ताकत उसके अपने नागरिकों की भागीदारी से ही आनी चाहिए।
ये भी काफी दूर की सोच थी।
बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सिर्फ गंभीर ग्रंथ ही नहीं लिखे, उन्होंने कॉमेडी नाटक भी लिखे।
नाटक? कॉमेडी?
हाँ, उनका एक नाटक है मैंड्रागोला, जो पुनर्जागरण काल की बेहतरीन कॉमेडीज में गिना जाता है। इससे पता चलता है कि वो मानव स्वभाव को कितनी गहराई से समझते थे, सिर्फ राजनीतिक नजरिए से नहीं, बल्कि मानवीय कमजोरियों और मजाकिया पहलुओं से भी वाकिफ थे।
एक गंभीर राजनीतिक विचारक, सैन्य रणनीतिकार और कॉमेडी नाटककार भी, ये तो काफी अनपेक्षित पहलू है उनका।
जी हाँ,
उनके कुछ कथन बहुत मशहूर है जो आज तक दोहराए जाते हैं, जैसे वो शेर और लोमड़ी वाली बात, उसका क्या मतलब है?
हाँ, ये द प्रिंस में है। वो कहते हैं शासक को शेर और लोमड़ी दोनों की तरह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शेर खुद को जालों से नहीं बचा सकता और लोमड़ी खुद को भेड़ियों से नहीं बचा सकती, इसलिए वो कहते हैं जालों को पहचानने के लिए लोमड़ी होना चाहिए और भेड़ियों को डराने के लिए शेर। मतलब सीधी सी बात है कि एक सफल नेता में ताकत शेर की तरह और चालाकी लोमड़ी की तरह दोनों होनी चाहिए, और उसे यह पता होना चाहिए कि कब कौन सा गुण इस्तेमाल करना है।
सही है। और एक और मशहूर कथन है डर और प्रेम को लेकर, कि प्रेम किए जाने की अपेक्षा भयभीत होना बेहतर है। ये सुनने में तो बड़ा कठोर लगता है।
हाँ, कठोर तो लगता है, ये भी द प्रिंस से ही है। देखिए, उनका पूरा तर्क ये था कि वैसे तो सबसे अच्छा है कि लोग आपसे प्रेम भी करें और आपसे डरें भी, दोनों हो तो क्या कहने।
हाँ, ये तो आदर्श स्थिति हुई।
लेकिन वो कहते हैं अगर दोनों में से एक को चुनना पड़े तो डर ज्यादा भरोसेमंद है।
क्यों?
क्योंकि प्रेम एक भावना है, एक बंधन है जिसे लोग अपने स्वार्थ के लिए आसानी से तोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन सजा का डर वो जल्दी नहीं जाता, वो ज्यादा स्थायी होता है। ये कठोर जरूर लगता है, पर यह उनके उसी यथार्थवादी नजरिए को दिखाता है कि इंसान मूल रूप से भरोसे के लायक नहीं होता, अपने फायदे को देखता है।
जाहिर सी बात है, ऐसे विचारों का स्वागत आसानी से तो नहीं हुआ होगा, खासकर उस जमाने में। चर्च का क्या रुख रहा होगा?
बिल्कुल आसानी से नहीं हुआ। कैथोलिक चर्च ने तो द प्रिंस पर फौरन पाबंदी लगा दी, उसे इंडेक्स ऑफ फोरबिडन बुक्स की सूची में डाल दिया।
ओह!
और जैसा आपने शुरू में कहा भी था, मैकियावेलियन शब्द एक गाली की तरह बन गया, चालाक, धोखेबाज, अनैतिक, जोड़तोड़ करने वाला। सदियों तक उन्हें बुराई का शिक्षक, शैतान का पैरोकार माना गया।
लेकिन इतनी आलोचना और बदनामी के बावजूद उनका असर तो बहुत गहरा और स्थायी रहा।
हाँ,
ये विडंबना ही है, विरोध के बावजूद या शायद उसी की वजह से उनके विचारों ने दुनिया भर के शासकों, दार्शनिकों, विचारकों और रणनीतिकारों को गहराई से प्रभावित किया। आप फ्रांसिस बेकन को देखें, या ज्ञानोदय के दार्शनिकों को, या फिर आधुनिक समय के रियल पॉलिटिक के समर्थकों को।
हाँ,
सदियों से नेताओं ने उन्हें पढ़ा है, उनसे सीखा है, या कम से कम उनके विचारों से जूझे जरूर हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के संस्थापक पिताओं ने, जैसे जॉन एडम्स ने, उनके गणतांत्रिक विचारों का, जो डिस्कोर्सेज में मिलते हैं, गंभीरता से अध्ययन किया था।
अच्छा।
और आज भी देखिए, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, लीडरशिप स्टडीज हो, यहाँ तक कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैनेजमेंट की बात हो, मैकियावेली के विचारों का हवाला आपको बार बार मिलेगा।
तो अगर हम संक्षेप में कहना चाहें तो मैकियावेली ने हमें राजनीति की एक ऐसी तस्वीर दिखाई जो शायद ज्यादा सच्ची थी, ज्यादा यथार्थवादी थी, भले ही वो हमें थोड़ी असुविधाजनक लगे।
बिल्कुल।
उन्होंने नैतिकता के ऊंचे आदर्शों से पर्दा हटाकर सत्ता के, कह सकते हैं, नंगे यथार्थ को हमारे सामने रखा।
एकदम सही कहा आपने। उन्होंने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या राजनीतिक सफलता और व्यक्तिगत नैतिकता हमेशा एक साथ चल सकते हैं? क्या राज्य को बचाने के लिए, एक बड़े लक्ष्य के लिए, कभी कभी ऐसे साधन अपनाना जरूरी हो जाते हैं जो नैतिक रूप से सही ना लगे? उनका नाम भले ही आज निंदक जोड़ तोड़ का पर्याय बन गया हो, लेकिन उनका काम इससे कहीं ज्यादा जटिल और गहरा है। वो हमें शासन कला की क्रूर सच्चाइयों, नेतृत्व की जरूरतों और हाँ, एक स्वशासित गणराज्य के गुणों के बारे में भी बहुत गहरी अंतर्दृष्टि देते हैं। उनके सवाल आज भी जिंदा हैं।
और यहीं पर शायद आज के श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ जाते हैं। मैकियावेली ने विर्च्यू यानी शासक का कौशल, क्षमता, साहस, और फॉर्चूना यानी भाग्य, संयोग, अप्रत्याशित घटनाएं की बात की थी।
जी।
आज की दुनिया को देखें जो शायद पहले से कहीं ज्यादा जटिल और अप्रत्याशित है। वैश्विक महामारी, तेजी से बदलती तकनीक, जियोपॉलिटिकल अस्थिरता, क्या आज के नेताओं के लिए वीड टू दिखाना और फॉर्चूना का सामना करना मैकियावेली के दौर से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है?
ये बहुत अच्छा सवाल है।
क्या प्रभावी होने यानी एक्शन लेने और नैतिक बने रहने यानी सिद्धांतों पर टिके रहने के बीच का तनाव आज और भी ज्यादा बढ़ गया है? क्या मैकियावेली के ये कॉन्सेप्ट्स आज के लीडर्स के लिए कोई सबक रखते हैं?
ये वाकई एक गहरा सवाल है और शायद इसका कोई आसान सीधा जवाब नहीं है, लेकिन मैकियावेली कम से कम हमें इन मुश्किल सवालों से नजरें चुराने नहीं देते, उनका सामना करने को कहते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।